This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Pope Francis arrived at the home of Iraq's top Shiite Muslim cleric in southern Iraq on Saturday for the first ever such meeting between the leaders of Roman Catholicism and Shiite Islam. Grand Ayatollah Ali al-Sistani was to greet Francis at his home in Najaf, the seat of the Iraqi Shiite clergy, on the second day of the pontiff's historic tour of Iraq. In Syria, missile strikes on makeshift oil refineries in the northern part of the country killed 4 people and injured more than 20 others, a war monitor said on Saturday. The British-based Syrian Observatory for Human Rights said a series of strikes launched from Russian warships and by allied Syrian government forces hit the makeshift refineries in Aleppo province on Friday night, causing a massive blaze as dozens of tankers caught fire in the area controlled by Turkey and its Syrian rebel proxies. Oil installations in Turkey-controlled parts of Aleppo have come under repeated attack in recent months, although Moscow and the Syrian regime have not claimed responsibility. Syria's war has killed more than 387,000 people and displaced millions since starting in 2011, with a brutal repression of anti-government protests. It later evolved into a complex conflict involving jihadists and foreign powers. Northern neighbor Turkey has seized control of several regions inside Syria in military campaigns against the Islamic State group and Kurdish fighters since 2016. For more on these and other stories making international news headlines, we invite you to visit our website at voanews.com. This is VOA News. As Guinea grapples with a fresh Ebola outbreak, community resistance to measures needed to rein in the deadly virus is high, a top Red Cross official has warned. Guinea confirmed the disease was back in mid-February, following first deaths the previous month. The West African country and international actors have reacted swiftly to stop the spread, isolating and treating cases, tracking contacts, and launching a vaccination campaign. But the health chief at the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said reluctance within communities to go along with measures was an obstacle. He told AFP that the resistance was not just community-based, but also religious-based, and not surprising, since this deadly killer of a disease does scare people. Ebola is transmitted through close contact with bodily fluids. It causes severe fever and, in worst cases, unstoppable bleeding. And death rates from Ebola are high, at around 50% on average of those infected, according to the World Health Organization. To date in Guinea and since February, 18 cases have been reported, 14 of which have been confirmed to be Ebola, including 4 people who have died, the WHO said. These mark the first Ebola cases to surface in West Africa since a devastating 2013 through 2016 epidemic that left more than 11,300 people dead in Guinea, Liberia, and Sierra Leone. Vaccines and other therapies, though, have since become available. Rights groups have denounced Zimbabwean government plans to evict thousands of villagers from their communal land and convert it to industrial animal feed farming. More than 13,000 Shangani people, an indigenous minority group, were last month ordered to immediately vacate nearly 13,000 hectares of land in southeastern Zimbabwe. The legal notice said the land would be set aside for grass production unless the villagers acquired fresh occupation rights. Lawyers representing the community on Friday filed 2 urgent high court motions to have the eviction notice declared unconstitutional. Human Rights Watch said in a statement Saturday that the Zimbabwean government should stop these evictions that would leave thousands of people destitute and vulnerable, especially in the midst of the coronavirus pandemic. For more on these and other stories, please visit our website or download our easy-to-use app to your mobile device. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
What वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फैटफ के उस फैसले के बारे में जो पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखने से मुतालिक है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के वफाकी वजीर सनद पैदावार हमाद अजहर ने इस फैसले के बारे में कहा कि फैटफ ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान 90% अहदाफ पूरे कर चुका है, जबकि आज से 2 साल पहले हम फैटफ के 2 निकात पर थे, आज 24 पर आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पहला हदफ ये था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से रोका जाए, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। और उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ तफ्तीश के ठोस नतायज और कल अदम तंजीमों के खिलाफ माली पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तो समीन क्यों ना हमाद अजहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इक्तिबास हम आपको सुनवाएं पहले, और उसके बाद हमारे माहिरीन बात करेंगे फैटफ की आयद करदा पाबंदियों के बारे में, मौजूदा फैसले के बारे में और आइंदा के इम्कानात के बारे में।
पाकिस्तान को फैटफ की तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे चैलेंजिंग एक्शन प्लान जो है वो दिया गया था, और इसका एतराफ इस मरतबा फैटफ के मेंबर कंट्रीज ने खुद किया कि इससे कॉम्प्रिहेंसिव और चैलेंजिंग एक्शन प्लान पहले किसी मुल्क को फैटफ की तरफ से नहीं दिया गया था। 2 साल पहले हम ये जो 27 निकाती एक्शन प्लान है इसमें से सिर्फ 1 निकात के ऊपर हम कंप्लायंट थे आज से 2 साल पहले। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 में से 24 निकात के ऊपर कंप्लायंट हैं, जो कि तकरीबन 90% कंप्लायंस बनती है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। पहला हमारा टारगेट तो ये था जब हमें सेक्शन प्लान हमें ये दिया गया और हमारी नई हुकूमत आई थी कि पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग को रोका जाए, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग के पाकिस्तान पर बड़े नेगेटिव असरात पाकिस्तान की मीशत पर मुरतब होने के चांसेस थे, और ये जाहिर है कि इसकी एक बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी और सेंटिमेंट इससे नेगेटिव आना था, और टाइमलाइंस बड़ी सख्त थी और दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हमने अचीव किया, और पिछली प्लेनरी में, यानी ये जो अभी प्लेनरी हुई है इससे पिछली प्लेनरी में, बाकायदा FATF कंट्रीज ने और FATF सेक्रेटेरिएट ने ये कहा कि ब्लैक लिस्टिंग अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल कर लिया। दूसरा हमारा हदफ ये था कि इस जो मौजूदा 27 निकाती एक्शन प्लान है, ब्लैक लिस्टिंग अपनी जगह, जो अब ऑप्शन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मुकम्मल किया जाए और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज दे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स और टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी आगे जा चुके हैं। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज फैटफ खुद कह रहा है कि 90% के करीब हमें कम्प्लीशन जो है वो हासिल हो गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में कोविड पेंडेमिक जब आया है बाकी सारी दुनिया की तरह, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम रिपोर्टिंग ना करते, लेकिन हम रिपोर्टिंग, और कुछ मुल्कों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, लेकिन हमने उस वक्त का फायदा उठाया और हम रिपोर्टिंग करते रहे, और हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो हमने इतना लंबा सफर तय किया है, और इंशाल्लाह ताला ये एक्शन प्लान भी हम जल्द खत्म कर लेंगे, जिसके 3 निकात रह गए हैं जो पार्शली कंप्लायंट है, और उन 3 में भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है मेरे नजदीक, वो भी हम लार्जली कंप्लायंट होने के उन 3 में भी करीब है। तो ये दिन रात की मेहनत है, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसके अंदर बेशतर इदारे शामिल हैं, जो वफाक में भी हैं, जो सूबों में भी हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, फाइनेंस से लेके, फॉरेन ऑफिस से लेके, पुलिस सर्विसेज से लेके, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से लेके, पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज से लेके, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से लेके, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसको आज सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि एक बहुत मुश्किल एक्शन प्लान, टाइट टाइमलाइंस, सख्त हालात कोविड के, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसने एक मिसाली प्रोग्रेस जो है वो अचीव की है, और इंशाल्लाह ताला ये वाला जो मौजूद एक्शन प्लान है इसे हम जल्दी मुकम्मल करेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया के वो वाहिद मुल्क है इस वक्त जो फैटफ के ड्यूल स्क्रूटनी के अंदर है, ये भी फैसला हुआ था कि पाकिस्तान ड्यूल स्क्रूटनी में रहेगा क्योंकि एक MER का जो उनका नॉर्मल प्रोसेस है वो भी साथ चल रहा है. तो हम इन पैरेलल हमारा पूरी जो हुकूमत है वो और सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के और सारे इदारे वो इन पैरेलल जो हमारा ड्यूल इवेल्युएशन का प्रोसेस है जिसे हम MER कहते हैं APG के MER उसकी कम्प्लीशन के लिए भी दिन रात जो है वो कोशा है.
तो सामिन ये इख्तिबास था पाकिस्तान के वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें उन्होंने बात की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उस फैसले के बारे में जो पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने से मुतालिक है. इसके साथ ही सामीन कुछ तजियाकारों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को सिर्फ कानून साजी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी लॉबिंग की जरूरत है. तकरीबन सभी ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने अपना केस अच्छे अंदाज में पेश किया और अगर फैटफ चाहता तो पाकिस्तान को इस वक्त भी व्हाइट लिस्ट में ला सकता था लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए अब सियासी महाज पर काम करने की भी जरूरत है. और सामिन इसी बारे में हम आज बात करेंगे यानी एक तो माली मुआवनत रोकने के लिए जो इकदाम किए गए हैं उनका तजिया करें और इसके साथ ही ये भी कि सिफारती महाज पर किस तरह के काम की जरूरत है और इस महाज पर पाकिस्तान को क्या दुश्वारियां दरपेश हैं. तो हमने इक्तसादी माहिरीन के साथ साथ सियासी तजियाकारों को भी मदऊ किया है आज के प्रोग्राम में. तो आगाज करते हैं मेहताब हैदर साहब से जो एक माहिर मईशत हैं मारूफ तजियाकार हैं. और मेहताब साहब क्योंकि आप पहली दफा हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि तफसील से अगर आप अपना तारुफ हमारे सुनने वालों से करवाएं.
जी मैम मेरा नाम मेहताब हैदर है. आई वर्क फॉर द न्यूज और मैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में जो है वो लिखता हूँ.
शुक्रिया मेहताब साहब. अब मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि आप इस मसले पर बहुत तवातुर से लिखते रहे हैं तो जरा हमारे सुनने वालों के लिए ये वजाहत कीजिए कि इसमें कौन से अरकान है क्योंकि बार बार हम बात करते हैं FATF की उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि एक ऐसा इदारा जिसमें चीन भी मौजूद है तुर्की भी है उसमें और कई पाकिस्तान के दोस्त हैं ऑब्जर्वर्स में इंडोनेशिया है किस लिए पाकिस्तान को हिमायत हासिल नहीं है दीगर अरकान की अगर कोई लॉबी उसके खिलाफ है तो वो दूसरी लॉबी उसके हक में क्यों नहीं है.
आप ये देखें कि पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था सबसे बड़ा खतरा ये था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में करते तो ब्लैक लिस्ट से रोकने के लिए आपको याद है कि उस टाइम सऊदी अरब फुल फ्लाइट मेंबर नहीं था लेकिन उसको ऑब्जर्वर का था. सऊदी अरब चाइना मलेशिया और टर्की इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान को जो टेक्निकल लेवल पे काम करने के बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे रोकने की कोशिश की थी वो यही थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो. अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए क्योंकि हमें मजीद अरकान की हमायत की जरूरत है. रिसेंटली ये जो फैसको हुआ है फ्रांस के हवाले से इसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद धचका लगा है वरना ये चांसेस थे कि हम इतने 24 points पे हमने अमल दरामद कर लिया तो पाकिस्तान को ग्रेजुएट कर दिया जाए फ्रॉम ग्रे टू वाइटनेस. वो डिप्लोमेटिकली मैं इसलिए कहता था कि हमें मजीद लॉकिंग करने की जरूरत है और अगर जिन ममालिक की कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है और उनको डिप्लोमेटिकली एंगेज करने की जरूरत है. जब तक हम एंगेज नहीं करेंगे उन्हें उस टाइम तक पाकिस्तान का जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल है. एक तरफ तो हमें टेक्निकल लेवल पे काम करना है लेकिन हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ज्यादा से ज्यादा ममालिक की और खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी जो है वो मदद हमने हासिल करनी है. चूंकि वजह ये है कि अगर आप मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे डिप्लोमेटिकली उन्हें नाराज करते रहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है. हम आइसोलेशन में तो नहीं रहते तो हमें उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उन पे उनसे बात करनी चाहिए उन्हें एंगेज करना चाहिए और ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही करके हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे.
वैसे इसमें तरीका कार क्या होता है वोटिंग का.
34-37 मेंबर्स हैं टोटल और ऑब्जर्वर्स भी हैं कुछ उसके अंदर जिसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस भी हैं और कुछ ममालिक भी हैं. अक्सरियत से जो है वो फैसला करना होता है उन्होंने. देखिए पाकिस्तान को जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर जब हमने इतना कुछ कर लिया है और उनके स्टाफ की ये जो उन टीम में काम करने की FATF की अगर हम उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाए और डिप्लोमेटिकली कर ले तो अक्सरियत का अगर फैसला और हम सपोर्ट हासिल कर सके तो تو پاکستان جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے.
تو مہتاب صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے فیٹف کا, تو اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہے, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جون میں کچھ امید ہے پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی یا نہیں؟
بنیادی طور پہ پاکستان نے جو لیجسلیٹو پارٹ تھا اس پہ تو کر لیا نا کام, اور آپ نے دیکھا کہ مختلف لاس کے اندر امینڈمنٹس بھی کی اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر بھی حکومت کو, جہاں پہ چونکہ سینٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی تو وہاں سے وہ مشترکہ اجلاس بلا کر وہ لیجسلیشن تو پاس کر لی. لیکن ابھی جو میں سمجھتا ہوں دو پارٹ ایسے ہیں جن پہ ہمیں مزید جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ان لاس کو جب ہم ان کی انفورسمنٹ کریں گے اور پراپر پروسیکیوشن اور کنوکشن کریں گے تو پھر یہ ڈیمونسٹریٹ ہوگا کہ پاکستان از سیریسلی پرسوئنگ دیز لیجسلیشن اگینسٹ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنانسنگ. تو ابھی وہ سٹیج ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو پریس کانفرنس بھی تھی جو ایف اے ٹی ایف کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنا سسٹینیبل طریقے سے جو ہے وہ ان لاس کے اوپر عمل درآمد کرے گا, اور اسی کے بعد ہم آن سائٹ وزٹ کریں گے اور اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کے ممبر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 3 ماہ کا عرصہ پہ اگر ہم یعنی اکراس دی بورڈ یہ امپلیمنٹیشن کرتے بھی ہیں تو کس حد تک جو ہے وہ ہم ایف اے ٹی ایف کو سیٹسفائی کر پاتے.
تو جو 3 نکات اب باقی ہیں ان میں سب سے اہم آپ کے خیال میں کیا ہے؟
بنیادی طور پہ اس میں جو ٹیررسٹ فائنینسنگ کرنے والی آرگنائزیشن ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں, دو جن کے تحت ہی یہ ایف اے ٹی ایف کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, 1267 اور 1373, ان کے جو لوگ انہوں نے کیے ہوئے ہیں آئیڈینٹیفائی, اور جو ایفیلیٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگوں کی ایک تو فائنینسنگ کو ہم کتنی افیکٹولی چوک کرتے ہیں, اور ان کے خلاف جو ہماری پروسیکیوشن ہے اور جو ہمارے کورٹس ہیں وہ کتنی تیزی سے کنوکشن کرتے ہیں, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو تینوں اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں. بنیادی طور پہ جو لاز تبدیل کر دیے گئے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ یہ لاز ہم نے پرماننٹلی وہ جو لاز ان کی ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس تھی ان کے مطابق چینج کر لی ہیں. اب انفورسمنٹ پہ 3 مہینے میں کیا وہ مطمئن ہو پاتے ہیں, یہی سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا باقی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو پچھلے یعنی 2 سے 3 سے 4 دفعہ پہلے بھی ایکسٹینڈیڈ جو ہے وہ ٹائم فریم دیا گیا ہے, لیکن اگر ہم میکنزم کو ٹھیک کرنے میں اور افیکٹو پروسیکیوشن اور کنوکشن میں ایک ڈیمونسٹریٹ کریں اپنی پولیٹیکل ویل تو میں سمجھتا ہوں ایف اے ٹی ایف کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے.
تو مہتاب صاحب یہ جو ان کی ہے مالی معاونت فائنینسنگ جو ہے دہشت گردوں کی, اس میں کون انوالو ہے؟
دیکھیں پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے, اور ایک پیج کے اوپر میں آنے کی وجہ سے ہی اتنی تیزی سے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب جون 2018 میں پاکستان کو گرین لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور 27 نکات کا ایک بڑا ایجنڈا دیا گیا تھا تو بڑا مشکل تھا کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہ ہوتی تو اس حد تک پروگرس ہو سکتی. تو یہ پروگرس ہوئی ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ اسٹیٹ کے لیول پہ ان کی کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. اب یہ آرگنائزیشنز تھیں جو وار تھی افغانستان میں اور اس کے بعد جو کشمیر میں ہوتا رہا اس کے دوران ڈیکیڈ آف 90s میں تو یہ اسٹیبلش ہوئی یہ آرگنائزیشنز, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیا. اور اسی لیے دیکھیں گے 9/11 کے بعد جب ان کو بینڈ آؤٹ فٹس کے اس میں شامل کیا گیا اور اب جو یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت ان کو جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کرا دے دیا گیا ہے, تو اب یہ آرگنائزیشن ہی ہیں. اب ان کے جو نیٹ ورک ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے جو فائنینسنگ کا سارے میکنزم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی کرمینل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے تو اس کے خلاف جو کرمینل پروسیڈنگز ہیں اس میں جا کے اس کو کنورٹ کروانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاز موجود ہیں, اب انفورسمنٹ کا ٹائم ہے ان کے اوپر.
تو آپ کے خیال میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کس حد تک جو سفارتی محاذ ہے اس پر لابنگ کی ضرورت ہے؟
मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखे लॉस कर लिए चेंज, अब उनपे जो है वो अमल दरामद भी शुरू कर दिया, और अगर किसी मुल्क के कोई कंसर्न्स हैं तो उनके कंसर्न्स को भी जो है वो दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी आ रहा है कि फ्रांस ने भी जो है वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा इसके अंदर मुखालफत की है।
यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फ्रांस की जो मुखालफत है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में तनकीद की थी फ्रांस के कुछ इकदाम पर।
आपको याद होगा कि तहरीक लबैक के लोगों ने कहा था कि फ्रांस के सफीर को जो है वो यहाँ से निकाला जाए, और हुकूमत ने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया था, और फिर बाद में उन्होंने कहा था कि हम इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे और पार्लियामेंट में जो है वो फैसला होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेट को जो है वो घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि इन प्रिंसिपल जो है अगर कोई मौकफ है आपका तो वो जरूर बयान करें, लेकिन चंद सौ लोगों के कहने पर जो है वो स्टेट को इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामिन ये थे डॉक्टर मेहताब हैदर, और सामिन अब मौशी उमूर की एक और माहिर अंजुम इब्राहिम साहिबा, जो न सिर्फ एक इक्तिसादी उमूर में महारत रखती हैं बल्कि आप इनके कॉलम भी पढ़ते होंगे, बाकायदगी से इस मौजू पर लिखती रहती हैं। तो अंजुम साहिबा शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे पता है कि आपने पहले ही कहा था कि आप इस वक्त कहीं और भी आपको जाना है, अगर आप इख्तिसार से हमें बता सकें कि क्या रद्द अमल है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले पर।
जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो वी आर स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट, और ये बहुत एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, बट आई डोंट थिंक ये ज्यादा कंसर्न थी कि हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, बिकॉज वी हैड डन अ लॉट ऑफ द लेजिस्लेशन। बेसिकली जो लेजिस्लेशन है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, हाउएवर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट रिमेन्स वीक, और अगर आप देखें जो तीन रह गए थे जो एक्शन के प्लान के तीन आइटम्स रह गए थे वो सारे हैं डेमोन्स्ट्रेट। सो डेमोन्स्ट्रेट जो एक्चुअली बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे है वो जरा ज्यादा हमारे लिए चैलेंज होगा बेस्ड ऑन आवर वेरी वेरी पुअर प्रोसिक्यूशन जो टीम है, और उसको स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव फीचर है। आपको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम पे भी हैं, IMF भी मॉनिटर कर रहा है हमारा, सो देर आर मल्टीपल पॉजिटिव जो उनको वाइब्स मिली थी एफिटिव, इसकी वजह से ये हमें वी आर स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट। कैसे निकाला जाएगा, इज दैट डूएबल बाय जून, बिकॉज जून तक दिया गया है, मुझे जरा मुश्किल लगता है, और उसकी मुश्किलात जो है वो उसकी बेसिक वजह है कि COVID-19 जो है वो अभी तक रैम्पेंट है हमारे यहाँ, कम हुआ है बट एट द सेम टाइम वो अभी तक हमारे पास है। वी आर ऑल्सो ऑन एज यू नो एक हमने एमनेस्टी डीवी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली, और एमनेस्टी स्कीम जो है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम, मे बी दैट हैज बीन ओकेड बाय द फंड IMF, बट आई एम नॉट श्योर कि ये जब तक ये स्कीम खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम प्रोबेबली ग्रे लिस्ट पे रहने का इम्कान होगा।
सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, दो है सवाल, कि किस वजह से ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किस वजह से ग्रे लिस्ट पे रखने की वजह है?
आई थिंक दिस इज द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कंस्ट्रक्शन का उनको कहा गया था, उनको बल्कि दिस आइडिया वाज सोल्ड टू हिम कि अगर कंस्ट्रक्शन को अगर आप खोल देंगे तो उससे कोई 60 अदर इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि IMF के जब प्रोग्राम हम 2019 को गए थे तो बहुत कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज थी जिससे कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और बिकॉज उन्होंने वो जो डिस्काउंट रेट को 13.5 कर दिया था, उन्होंने एट द सेम टाइम जो हमारी टैक्सेस थे वो 5.5 trillion के कर दिए थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो ऑलरेडी हम एक ट्रैक्शनरी फेज में थे, हमारी ग्रोथ रेट वॉज सपोज टू बी नो मोर देन 1.5% बिफोर, दिस इज प्री कोविड। तो कोविड तो मार्च में आया था, मार्च से जून तक चलो और खराब हो गई थी, बट इवन देन यू नो टिल फेब्रुअरी हमारी जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज जो एग्री कर गए थे हमारी इकोनॉमिक टीम लीडर्स, विच आई एक्चुअली डू नॉट डिड नॉट सपोर्ट, वो उसकी वजह से ये कहा गया था कि फिर कोविड भी आ गया तो लेट्स हैव दिस एमनेस्टी स्कीम और ये उन्होंने दोबारा की है. हाउ सक्सेसफुल इट इज आई एम नॉट श्योर बिकॉज हमारी एमनेस्टी स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल अब तक तो हुई नहीं है.
अच्छा, आपने जैसे कहा कि जून में आपको खतरा इसलिए है क्योंकि कोविड की सूरत हाल अब तक खराब है, तो हमाद अजहर साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद था कि वो इसको पोस्टपोन करवा सकता.
पोस्टपोन मेरे ख्याल में इस वास्ते ही होगा, एक तो एमनेस्टी स्कीम की मैंने बात की विच वॉज डिजाइन टू फॉर यू नो फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्टिविटी पोस्ट कोविड बिकॉज बहुत हमारे यहाँ स्लंप ऑलरेडी मैंने जैसे कहा आया और इसकी वजह से तो और बहुत ज्यादा आ गया. So there was a need to get people working again. As I said, mere hamari jo figures hain wo bade matlab hai ki they are not very realistic. Jo hamare Pakistan Bureau of Statistics ki bhi jo data hai wo bahut it's taken with a quite a bit of a salt, pinch of salt. To wo cheeze jo hain wo to apni jagah hain. But ye mera khayal mein amnesty scheme jo hai ye they are still hoping ki it will take care of a lot of the issues that are related to poor productivity, jo ke ye to some extent or to a large extent is due to the fund program.
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है. फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA.
तो सामिन, कराची से कैसर बंगाली साहब मेरे साथ हैं, आपके जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे तजियाकार हैं मौशी मसाइल पे. कैसर बंगाली साहब, ये जो फैसला आया है तो उस पर आपके कमेंट्स जानना चाह रही थी कि हमाद अजहर साहब का कहना है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत उम्दा है क्योंकि उसने 24 जो है अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं. तो आपको क्या लगता है कि अब जून में किसी बेहतर फैसले की उम्मीद है?
तो तवक्को थी ग्रे लिस्ट पे रहेगा पाकिस्तान और मैं ये बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि जून में भी रहेगा. अगर हमने 27 में से 650 की भी हमें मिल गई कि आपने अप्रूव कर दिया तो आधा तो रह जाएगा, क्योंकि फैटएफ सिर्फ टेक्निकल वो नहीं है, इसके पीछे सियासत है. फैटएफ के साथ साथ IMF के कंडीशंस को भी हमें देखना चाहिए. जो IMF पाकिस्तान से काम करवा रहा है माशी महाज पे, वो फैटएफ सियासी महाज पे करवा रहा है. मगरब के पास एक लीवरेज आ गया है पाकिस्तान को मैनिपुलेट करने का, वो ये छोड़ना नहीं चाहेंगे. पाकिस्तान खुद निकल सकता है अगर पाकिस्तान फैटएफ के कहने पे या फैटएफ के कंडीशंस के हवाले से नहीं खुद ही कर दें, तो उनके पास जवाब नहीं रहेगा. लेकिन वो हमने नहीं किया है, वक्ती तौर पर उसे बंद कर देते हैं. लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी के जो बेस्टियंस हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं. मौलाना रिजवी का एक जो नई पार्टी अचानक खड़ी हो गई, डैनियल पर्ल के जो कातिल हैं उनको रहा कर दिया गया, ये सारी चीजें होती रहती है. तो दुनिया क्या मैसेज ले रही है पाकिस्तान से? मैं नहीं समझता कि फैटएफ से हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे, ब्लैक लिस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये है कि उनकी लीवरेज खत्म हो गई पाकिस्तान को मैनिपुलेट करने की.
तो कैसर बंगाली साहब, जैसा कि आपने कहा कि ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये है कि लेवरेज खत्म हो जाएगी, तो ब्लैक लिस्ट होने इसका नुकसान क्या है
पाकिस्तान को? नुकसान ये है कि जाहिर माशी नुकसान बहुत ज्यादा है, डिप्लोमेटिक नुकसान है. पाकिस्तान बहुत सारे फोरम बैनुल्कवामी फोरम में वेलकम नहीं होगा और पाकिस्तान के जो मुखालिफ ममालिक है, बुनियादी तौर पर हम इंडिया को समझते हैं हमारे सबसे बड़े मुखालिफ है, उनको एक फ्री स्टांस मिलेगा. हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फैटएफ की जो कमेटी है जो फैसला करती है पाकिस्तान की किस्मत पे, उसमें हिंदुस्तान भी बैठा हुआ है. लेकिन चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करता है फैटएफ में. सबको तशवीश है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से, मजहबी इंतहा पसंदों को जो यहाँ सियासी स्पेस मिली हुई है उससे. ये जिस हाल में हम हैं वो हमने खुद अपने आप को डाला है, तो हम खुद ही निकल सकते हैं इससे.
अब तीन जो रह गई हैं अहदाफ, जो तीन बाकी हैं वो क्या हैं इस वक्त?
ये टेक्निकल चीजें हैं कि आप सजा दे देते हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, इस तरह की चीजें हैं. बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी ये ऐसा नहीं है. ये तो ये कि आपने जी कानून बना दिया, चलो ये तो ऑब्जेक्टिव है, बना दिया कानून. अब उस कानून पे अमल कोई कहता अच्छा किया है, कोई कहता नहीं अच्छा किया है, ये तो सब्जेक्टिव रहेगा और डेफिनेशन के मोहताज होगा कि किस तरह कौन डिफाइन करता है. इसलिए मैं समझता हूँ कि 26.5 हम अटेम्प्ट कर भी लेंगे तो आधा जरूर रह जाएगा.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو یہ تھے قیصر بنگالی صاحب جو کراچی سے ہم سے بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے ہیں فیٹرف یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اس فیصلے کے بارے میں جو پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھنے سے متعلق ہے. لیکن ادارے نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے 24 اہداف کو پورا کر لیا. ماہرین معیشت کے تاثرات آپ نے سنے. اب بات کرتے ہیں سیاسی تجزیہ کاروں سے. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیشہ تو وہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں لیکن آج کل وہ آئی ہوئی ہیں یہاں امریکہ اور بالٹیمور سے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. تو ہما آپ مجھے بتائیے کہ فیٹیف کا جو فیصلہ ہے پاکستان کو گرے لسٹ میں جون تک رکھنے کا, تو کیا نظر آتا ہے اس کا پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ سیاسی اثر اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ اس وقت پولیٹیکل رائیولری ہے اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوگا. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان فیٹف کی لسٹنگ گرے لسٹنگ سے نکل جائے یہ کنسرن اکراس پارٹی لائنز ہے. اور جس کو آپ پاکستان میں آپ لوگ ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں اور ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہاں یہ کنسنسس ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ فیٹف کو پولیٹیسائز کیا جائے گا, بلکہ جو فیٹف کے حوالے سے وہ تھی لیگسلیشن تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے وقت پہ پاس ہوئی جس وقت شدید ترین پولرائزیشن تھی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں. اور ٹریجری بینچز نے ایکیوز کیا تھا اپوزیشن بینچز کو کہ یہ نیشنل انٹرسٹ پہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اتنا اثر ضرور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان دوبارہ ابھی مطلب جون تک کی ایکسٹینشن ملی ہے تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان میں کہ وائی از دس ناٹ ہیپننگ امیجیٹلی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیزائن ہے اور پاکستان ہیز ڈن انف. کیونکہ میرے خیال ہے کہ کتنے رہ گئے ہیں جو مجھے دیکھا تھا, باقی سب جو ہے کمپلائنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. اور اب اس کو لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے انڈیا کے حوالے سے ڈوسیئر بھی پیش کر دیا ہے, ٹینجیبل ایویڈنس پیش کر دی ہے انڈین انوالومنٹ کی پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, وہاں پر کوئی پیش رفت نہیں ہے اور پاکستان پہ ٹائٹن کیا جا رہا ہے اسکرو. اور شناز میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہتی ہوں اور آپ کے توسط سے اس کے لیے بات بھی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے بہت بات ہو رہی ہے کیمپ پالیٹکس کی کہ کیا کیمپ پالیٹکس ساؤتھ ایشیا میں ہونے جانے والی ہے, یعنی کہ چائنیز کیمپ اور ویسٹرن کیمپ. اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو اس قسم کے ایکشنز ہیں جو پاکستان پہ پریشرز کریٹ کیے جاتے ہیں, پاکستان کو صرف ضرورت کے تحت کلٹیویٹ کیا جاتا ہے, ادروائز پاکستان پر ایک پریشر رکھا جاتا ہے, چاہے وہ نیوکلیئر ایسٹس ہوں پاکستان کے, چاہے وہ پاکستان کا اوور آل ساؤتھ ایشیا میں کردار ہو امن کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے, چاہے فیٹف جیسے ایشوز ہوں, اور وہ پاکستان کو مزید پش کرتا ہے چائنا کیمپ میں. تو اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا یہ ٹرسٹ ہے کہ اسے پاکستان کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور کیمپ پالیٹکس کو نہیں بڑھوتی دینی ہے, اور چاہے اگر یہ کانشیس تھنکنگ ہے کہ پاکستان از این امپورٹنٹ اسٹیٹ ان ساؤتھ ایشیا دیٹ جہاں پر آپ کو ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ سے پچ نہیں کرنا ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان جو تھا وہ ون اگینسٹ واز پچڈ اگینسٹ انڈیا. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ واشنگٹن کے ساتھ دہلی کھڑا ہے اور پاکستان بیجنگ کے ساتھ کھڑا ہے. اگر ان بیٹل لائنس کو ہمیں بہت زیادہ اسٹرینتھن نہیں کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پہ جو پروگریس ہے اس کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور پاکستان کا جو ول ہے ٹو کیری آن ود دس اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی فورن پالیسی از اباؤٹ بیلنس رائٹ ناؤ. پاکستان ویسٹرن ورلڈ اور بیجنگ کے درمیان اپنی فورن پالیسی میں بیلنس چاہتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے یہ ورڈکٹ دے دیا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کیمپ میں ہے تو لہٰذا پاکستان پہ پریشر رکھا جائے. میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجی غلط ہے.
مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے ہی موجود ہے یہ کیمپ پالیٹکس اس وقت.
یہ کیمپ تو موجود ہے لیکن اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کوئی ری تھنکنگ ہے اس حوالے سے.
اچھا, تو
اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایکیوٹ کنفرنٹیشن نہیں چاہتی بلکہ کمپٹیشن چاہتی ہے یا کنورجنس چاہتی ہے, مطلب اگر وہ چائنا کے ساتھ ایکیوٹ کانفرنٹیشن میں, تو میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے نا. اگر ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی ڈیزائر نہیں ہے اور اس کو ہیلدی کمپٹیشن یا کنورجنس رکھنا ہے तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस स्कैम पॉलिटिक्स में इस तरह से पुश नहीं करना चाहिए, जबकि ये करना जरूरी नहीं है. पाकिस्तान के अंदर ये डिजायर है कि वो अपनी रिलेशनशिप बैलेंस करे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ.
तो हमें जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान को अपना केस सही तरह पेश करने की जरूरत है, तो क्या आपके ख्याल में, हमें ये नजर तो आया है कि हालिया दिनों में कई मामलों पे जैसे कश्मीर पे पाकिस्तान ने अपना केस माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके पे,
मेरे ख्याल है कि देखिए फैटफ में भी हमने केस बहुत अच्छे से पेश किया. ये 2018 में हमें मॉनिटरिंग लिस्ट में यूएस और यूरोपियन नेशंस ने पुश किया था. पाकिस्तान में जो सोच है, मैं आपसे वो गोश गुजार कर रही हूँ, पाकिस्तान में सोच है कि ये किसी तरह कन्वर्ज हुआ था जब हमारी ये हमें मॉनिटरिंग लिस्ट में डालना जो था वो सूट कर रहा था उस वक्त उनको. पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग 2018 से शुरू नहीं हुई थी. पाकिस्तान इन चीजों के हवाले से चश्मपोशी और नजरबंदी तो बहुत अरसे से वेस्ट करता है ना. इसको उस वक्त उठाया गया है जब पाकिस्तान को वेस्ट देखता है कि वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है, उसके पास अल्टरनेटिव है, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस सियासत को समझते हुए कंप्लाई किया. देखिए किन कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना, मलेशिया और टर्की ने. एक ईस्टवर्ड ईरान भी उभर रहा है. उस ईस्टवर्ड ईरान में भी लोग कह रहे हैं कि एक कन्वर्जेंस है टर्की के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, रशिया के बीच में. तो मेरे ख्याल है कि ये जो बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही है इनको एड्रेस करने की जरूरत है और पाकिस्तान पे इस तरह का प्रेशर रखना जहां पाकिस्तान की तरफ से कंप्लायंस है. लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी 100% कंप्लायंस करें तब हम आपको ब्रीदिंग स्पेस देंगे, जबकि हमें पाकिस्तान में ये नजर आता है कि अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, जहां इस किस्म की बहुत सारी चीजें हो रही है और कोई समझिए वेस्ट की तरफ से बिल्कुल अलावा इसके कि कभी कोई सॉफ्ट पैडल तहफात का इजहार हो जाता है, बियॉन्ड दैट कुछ भी नहीं होता. किस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है कश्मीर में, जेनोसाइड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हुई है कि जेनोसाइड है. आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, जो डेमोक्रेसी इटसेल्फ अंडर स्ट्रेन्स है, हमें तो एक लफ्ज भी नहीं नजर आता तंबीह के हवाले से. स्टेप्स तो दूर की बात है. और मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान दूर से दुलावा है, लेकिन से आधा भी अगर पाकिस्तान में हो गया होता तो हंगामा मच गया था. मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ऐसी फीलिंग है इस वक्त पाकिस्तान में कि बैलेंस ट्रीटमेंट नहीं है पाकिस्तान में के हवाले से. और ये मेरे ख्याल है कि खत्ते की में हसूल अमन के लिए अच्छा नहीं. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग वेरी हार्ड. पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग बैठे हैं वो, और ये सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ केस पिच नहीं कर रहे शनाज, नीचे ग्राउंड पे अच्छी चीजें हो रही, इनको क्यों नहीं आप एड्रेस कर रहे हैं. और बाइडन नोज पाकिस्तान लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. उनको पाकिस्तान की समझ है और उन्हें पता है कि पाकिस्तान में जो ये प्रोग्रेस हो रही है ये रिग्रेशन की तरफ भी जा सकती है. तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी है बजाय कि इसको कल्टिवेट किया जाए पाकिस्तान पे मजीद प्रेशर रखा जा रहा है. अगर पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में ले आया जाएगा इस कंडीशन के साथ कि जी आप ये इनको एड्रेस कर लें एंड वी आर पुटिंग यू ऑन द व्हाइट लिस्ट, तो पाकिस्तान में मोटिवेशन होगी ये काम करने की बजाय इसके कि जून और फिर शायद दिसंबर. मतलब आप कितनी दफा हमें ये डिले कर चुके हैं ना.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com.
लाहौर से प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ हैं. अस्करी साहब शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए. ये जो FATF का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंस का मामला नहीं है, इसमें बहुत हद तक सियासत का भी अमल दखल है. तो पाकिस्तान जो 25 फरवरी के इजलास में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, क्या आप समझते हैं कि इसमें सियासत कारफरमा थी या वाकई पाकिस्तान को अभी कुछ आदाफ पूरा करने की जरूरत है?
देखिए FATF में पॉलिटिक्स है. अब पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं उसकी बुनियाद पे आप ये एतमाद कर सकते थे कि बाकी एक आध चीज अगर कुछ रह भी गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी. लेकिन पाकिस्तान को प्रेशर में रखना जो है ना, कुछ ममालिक के लिए इसलिए जरूरी है कि उन्हें अफगानिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान की कोऑपरेशन जो है वो चाहिए. दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिकली प्रेशर में रखा जा सकता है. इंडिया की कोशिश ये थी कि ग्रे से ब्लैक में चला जाए, वहां तो नहीं गए, लेकिन इंडिया भी उनमें से है जो चाहता है कि ये अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा तो कम अज कम ग्रे में उलझा रहा है. तो इसमें देखिए बैनुल अक्वामी सतह पर जो है ये सियासत लॉबिंग सपोर्ट ये फैक्टर बड़े काउंट करते हैं क्योंकि इसमें जो बहुत से जजमेंट आप करते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते वो सब्जेक्टिव होते हैं कंट्रीज की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं उसके हिसाब से वो करते हैं तो इसलिए एक बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है ये सारा का सारा प्रोसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है।
तो अगर डॉक्टर साहब पहले अफगानिस्तान की बात करें अफगानिस्तान का जहर एक बहुत ही आम मसला है ये तो अमेरिका में जो तब्दीली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको लगता है कि कुछ अमेरिका की हिमायत हासिल होगी पाकिस्तान को अब एफएटीएफ में?
देखिए पाकिस्तान के मुतालिक जो अमेरिका का रवैया है वो उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है अफगानिस्तान के मसले के साथ है प्राइमरी कॉन्सिडरेशन और फैक्टर्स भी हैं मतलब पाकिस्तान चाइना के ज्यादा करीब है तो अमेरिका चाहेगा कि इतना भी करीब ना हो जाए। अच्छा और फिर ये है कि पॉपुलेशन है ज्योग्राफिक लोकेशन है तो उसकी वजह से ठीक ताल्लुकात तो रखना चाहते हैं लेकिन इस इलाके में जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो इंडिया है पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की रेलेवेंस जो बनती है वो अफगानिस्तान के हवाले से है और वो यही चाहेगा कि पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करे और ताकि काबुल हुकूमत के साथ कोई एग्रीमेंट हो वहाँ पीस हो और अगर फर्ज कीजिए तालिबान के साथ एग्रीमेंट हो भी जाता है काबुल हुकूमत का तो बाद में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी पाकिस्तान की कोऑपरेशन की जरूरत होगी तो इस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत है और लिहाजा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक चलते तो रहेंगे लेकिन उसमें वो कहना चाहिए गहराई वो डेप्थ नहीं होगी जो कभी किसी स्टेज पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो सकती थी क्योंकि अब अमेरिका के मुफादात में कुछ फर्क आ गया है इलाकाई हवालों से।
तो डॉक्टर साहब इस बार जब मामला पेश हुआ पाकिस्तान का तो उसमें फ्रांस ने भी मुखालफत की इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की जानिब फ्रांस से जो एहतजाज किया गया या ये कि भारत और फ्रांस के दरमियान जो दिफाई सौदे हैं वो अब अरबों डॉलर के हैं तो इसमें से क्या वजह कार फरमा थी?
नहीं देखिए इसमें जो भारत वाला जो फैक्टर है वो तो खैर हमें मेरा ख्याल है नहीं हो सकता क्योंकि भारत ने यानी कि फ्रांस से अगर फैसला कर लिया तो फ्रांस से वो चीजें वेपन सिस्टम वगैरह जो भी है वो खरीदेगा। हाँ ये जरूर है कि फ्रांस के खिलाफ एक कैंपेन तो है ना जो पाकिस्तान से चलती है तो उसकी वजह से फ्रांस ने सोचा कि अगर पाकिस्तान उन पर एक प्रेशर बिल्ड करता है डोमेस्टिकली भी और एक्सटर्नली भी तो किसी न किसी तरीके से वो भी काउंटर प्रेशर बिल्ड करे तो लिहाजा उन्होंने एक क्रिटिकल यानी मुतालबे डिमांड थोड़ी सी रखी उन्होंने ताकि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में न जाए यही खड़ा रहे। तो ये देखे ना ये सारी सियासत होती है और एक चीज समझना जरूरी है कि आलमी सतह पे कोई बात भी हो उसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। असूल अपनी जगह होते हैं लेकिन असूल हर चीज असूल की बुनियाद पर नहीं होती असूल प्लस पॉलिटिक्स होती है तो इसमें तवाजन किस तरह आप कायम करेंगे ये किसी डिप्लोमेसी की कामयाबी होती है।
तो डॉक्टर साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत संजीदा है दहशतगर्दी की सरगर्मियों को खत्म करने में भी और हुकूमत और फौज एक पेज पर भी नजर आते हैं लेकिन एक दो बातें ऐसी हुई जैसे डैनियल पर्ल का जो मामला है उनका जो केस उनका है और उसके साथ ही फिर ये तहरीक लबैक ने मुतालबा किया तो आपके ख्याल में हुकूमत को किस तरह की दुश्वारियों का सामना है इस मामले पर?
हुकूमत को इंटरनल मुश्किलात तो हैं वजह यह है गवर्नेंस के सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में और अपोजिशन का उन पे प्रेशर है तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये बात जो की थी कि फ्रांस के जो एम्बेसडर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा वो उस वक्त की प्रेशर को कम करने के लिए फैसला किया है। अब उन्होंने ये मामला पार्लियामेंट पे डाल दिया है असेंबली पे डाल दिया नेशनल असेंबली पे कि वो डिस्कस करेगी फ्रांस से किस किस्म का रवैया हो क्योंकि वो जमात जो है तहरीक लबैक वो तो कहती है फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की मजहबी और सियासी जमातें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करेंगी ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस तरह अगर आप जमातों को इजाजत दें कि वो फैसले करें कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह होगी तो फिर मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी सही चल नहीं सकेगी। तो इसलिए पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा डायलमा है उन्होंने असेंबली पे डाला है इस मामले को अपनी जान बचाने के लिए लेकिन असेंबली में उनको कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी इस वक्त वो कोई पोजीशन लेने से घबरा रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब कोई और मुल्क आपको ऐसा नजर आता है जिस तरह एफएटीएफ का में उसका मामला इतना लंबा चला हो?
मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा कोई ऐसी एग्जांपल है, क्योंकि वो या तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या व्हाइट में ले जाते हैं, इसमें थोड़े अरसे के लिए रखते हैं। अब पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में यानी एक प्रेशर के अंदर रखा हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा केस कोई और अगर हो सकता है वो हमें इल्म ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यानी ये 2018 से किस्सा चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब आप देखेंगे हम कहाँ पहुंचे हैं। और अब भी वो कहते हैं जून में इस पर गौर होगा, अब पता नहीं जून में क्या होगा। असल में पाकिस्तान की एक मजबूरी भी है, देखिए पाकिस्तान अगर इक्तसादी तौर पर इतना डिपेंडेंट ना हो बाहर की ताकतों पे, IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे और इंडिविजुअल ममालिक पे, मगरबी ममालिक पे, तो फिर शायद पाकिस्तान एक स्टैंड ले सकता था। लेकिन अब वो इसलिए दखता है कि इसको बाहर से फाइनेंशियल इकोनॉमिक असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है, अपनी इकोनॉमी इनके पांव पे खड़ी नहीं है, बाहर की मदद की जरूरत होती है, तो उसकी वजह से इस किस्म के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते। सो भी आप देखें फाइनेंशियल डीलिंग्स अब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तान में हाल ये हो गया है कि अगर आपका बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से अगर $100 भी आपके अकाउंट में आ जाए, कोई भी ट्रांसफर कर दे आपको $100, तो उसके लिए भी बैंक आपसे पूछता है कि इसका कोई सोर्स हमें बताएं, कहाँ से आया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन इसकी हमें दिखाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते वो $100 आपको क्रेडिट नहीं करेंगे। तो इससे आप अंदाजा कर लें बैंक अकाउंट खोलना पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत मुश्किल काम है, ये बैंक अकाउंट खोलना जो है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने काफी चीजें तब्दील की हैं, तो उम्मीद है कि बाकी ने भी वो आहिस्ता आहिस्ता कर लें।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
तो सामिन ये थे प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, और आखिर में बात करते हैं यहाँ वाशिंगटन में डॉक्टर जुबैर इकबाल से। एक तवील अरसे तक IMF से वाबस्ता रहे हैं, इस वक्त मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में एक माहिर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का रابطہ रहा है इन तमाम इदारों से। तो चलिए डॉक्टर जुबैर से बात करते हैं, और अभी तक जो भी तहफ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए या जो भी लोगों के मुशाहिदात हैं, तो डॉक्टर साहब ये जो फैसला है इसमें अगर आप हमें थोड़ा सा बताइए कि लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक सियासत से भी है, यानी इसका मकसद ये है पाकिस्तान को प्रेशर में रखना।
देखिए जहां तक पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है वो तो कोई नॉर्मल बात है, वो कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, तमाम दुनिया में ऐसा होता है। और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो अपने जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को सामने जरूर रखते हैं। ये जरूर है कि काफी हद तक न्यूट्रलिटी कायम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद सियासी इश्यूज जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इसलिए जो फेडरल के साथ मामला है पाकिस्तान के साथ, उसमें कोई नई बात नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सियासी तौर पे भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हालांकि उनको उसको बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है जितने की वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो होता है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में क्या है, क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो ये जो तमाम के तमाम इंडिस्ट्रक्शन अब इंफेक्शन कह दीजिए, इनको खत्म करना जरूरी था। कभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्योरली इकोनॉमिक्स और एनालिटिकल बेसिस पे ये रिस्ट्रिक्शन थी, किसी ये जो फैक्टर्स के जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो ठीक थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी और फॉरेन फाइनेंशियल इश्यूज थे उनमें किसी हद तक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऐसे आ गए थे कि वो पाकिस्तान की इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन और मैनेजमेंट है उससे बुरा असर डाल रहे थे। अब चूंकि उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और उसके साथ साथ इलीगल फंडिंग की जा रही थी, तो उनको खत्म करना जरूरी था। ये पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में भी खत्म किया जाए, पाकिस्तान ने काफी स्टेप्स लिए हैं। फैटिफ ने जो स्टेप्स कहे थे उनमें बड़ी हद तक कई फैटिफ के जो स्टेप्स थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उस सूरत में ये कहना ठीक है कि पाकिस्तान उस मुकाम पे पहुंचता जा रहा है कि जहां उसको ग्रे लिस्ट पे रखना जरूरी नहीं। हवा ये भी देखना जरूरी है कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनमें भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से स्टेप्स नहीं लिए और वो अभी स्टेप्स लेने वाले हैं। इसलिए पैटर्न जो है वो चाहता है कि जब तक वो स्टेप्स पूरी तरह ले लिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन का मुकम्मल मुताबिक होना जाए, वो पाकिस्तान को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उसको ग्रे लिस्ट में रखेंगे, लेकिन उम्मीद ये दी जाती है कि अगर पाकिस्तान वो स्टेप्स लेने के लिए तैयार है तो फिर, और अगर ले लेता है तो फिर छह महीने के अंदर अंदर इसके रिस्ट्रिक्शन जो है, जो ग्रे लिस्ट की रिस्ट्रिक्शन है, उनको खत्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान दोबारा व्हाइट लिस्ट पे चला जाएगा। तो ये दुरुस्त फैसले हैं। ये मानता हूं मैं कि इनमें पोलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो लाए हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि इस किस्म की जो
تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ فیٹف میں ظاہر ہے کہ جو بڑے ملک ہیں ان کے مفادات ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس وقت کون سے ملک کے مفادات آپ کے خیال میں ہندوستان کے علاوہ؟
دیکھیے ان دس کانٹیکسٹ جہاں تک یورپین یونین کا تعلق ہے اس کا بھی انٹرسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک امیرکنز کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل ریلیشن ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، وہ سامنے نظر آئے تاکہ کسی قسم کے ڈاؤٹس اور شکوک نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پرابلم یہ تھی کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے تھے اور ان کو فنڈ کرنے کے لیے وہ باہر سے پیسے منگواتے تھے، یا پاکستان سے پیسہ جاتا تھا دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھیے پاکستان کی ریمیٹنسز بہت زیادہ، اور کئی حد تک ریمیٹنسز جو تھے وہ لیگل پروسیس سے نہیں آتے تھے بلکہ ان لیگل پروسیس سے آتے تھے، جس میں کہ انفارمل ٹرانزیکشن شامل ہو جاتی ہیں، لوگ کیش لے کے آ جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہنڈی کا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اس تمام ایشو جو ہوتے ہیں اس میں نان ٹرانسپیرنسی پیدا ہو جاتی، اور نان ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی ریسورسز ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ملک کی جو نیشنل پالیسی ہوتی ہے اس کی افیکٹونیس کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے یہ فیصلے جو کیے گئے تھے اور اس قسم کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ اس قسم کے ٹرانزیکشن نہ ہوں، ٹھیک تھی۔
بات ہو رہی ہے کہ فنڈنگ جو آتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہ باہر سے بھی آتی ہے اور پھر ملک کے اندر سے باہر جاتی ہے، تو باہر کہاں سے آتی ہے یا تھی پاکستان میں؟
دیکھیے یہ بڑی ڈیٹیل والی بات ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی اسٹرکٹ ایویڈنس نہیں ہے، میرا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے اس کی بیسس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک جو آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں مڈل ایسٹ، ان میں سے کچھ آرگنائزیشن ایسی تھیں اور انڈیویجول ایسے تھے کہ وہ ان ریسورسز کو بھیج رہے تھے کیونکہ وہ ان قسم کی جو آرگنائزیشن تھی ان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹس کے انٹرسٹ میں ہو، لیکن انڈیویجول اور کچھ انڈیویجول آرگنائزیشن کے انٹرسٹ میں تھی کہ وہ ان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ریلیجس ریزن کے لیے یا پولیٹیکل ریزن کے لیے، جیسے بھی آپ دیکھ سکیں، ان کو استعمال کیا جاتا تھا اور ریسورسز ٹرانسفر ہوتی تھی۔
تو کیونکہ پاکستان میں ایک عام آدمی جو بہت گہرائی میں بات کو نہیں دیکھتا، اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک غیر منصفانہ سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے جو موجودہ حکومت نے اس نے بڑی ایمانداری سے اقدامات کیے اور اسی وجہ سے 24 اہداف تک پہنچ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا ممکن ہے یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان میں جو اداروں میں بد انتظامی ہے، تو اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے 100% اس ہدف کو حاصل کر لینا ممکن ہے؟ جو کہ
100% کبھی ممکن نہیں ہوتا، کہیں بھی ممکن نہیں ہوتا، اور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی۔ اصل بات ہوتی ہے کہ پروگرس کیسی ہے، جو کہتے ہیں مارجنل ایکشن کیا لیا جا رہا ہے، اگر اسٹیپس صحیح لیے جا رہے ہیں اور وہ کنٹینیوسلی بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ 100% کوئی سیکیورٹی یا ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کر ہی نہیں سکتا، امریکہ میں بھی نہیں ہوتی، یورپ میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو یہ ایشو جو آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوں گی جو کہ ایکسٹرا لیگل ہوں گی یا انلیگل ہوں گی، لیکن اگر اوورویلمنگ میجورٹی اپنی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیگل ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو پھر فائن، اسی بیسس میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں انسان وہ کسی قسم کی حرکت تو کریں گے، لیکن اگر ریسٹرکشن ایسی نہ ہو اور اگر ٹرانسپیرنسی ایسی ہو کہ اس قسم کے اگر ریسورسز کو ٹرانسفر کیا جائے تو ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا یا ان کے اوپر کوئی شبہ نہیں ڈالا جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، آ جاتا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہر ملک میں، ہر معاشرے میں کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس قسم کے انلیگل اسٹیپس آپ کہہ لیے جا رہے ہیں، لیکن دیئر ریالٹی کوشچن یہ ہے کہ کس حد تک ہے اور کس حد تک وہ کم ہو گئے.
تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل آپ نے بجا کہا, اور میرا خیال اس پروگرام میں جتنے بھی ماہرین تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. ظاہر ہے دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت تو کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے, لیکن جو جیسے یورپ کے اگر اعتراضات ہیں تو پاکستان میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے جس کو کہتے ہیں بلیک منی اپنی ساری کی ساری کمائی اور پھر غائب ہو گئے اور یورپی ملکوں میں جا کے پناہ لی, اور پھر کوئی بھی حکومت کے باوجود کوششوں کے ان کی واپسی عمل میں نہیں آئی. تو کیا یہ پھر یورپی ملکوں پر بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں نہ کریں؟
بالکل بجا فرمایا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ ریسورسز جو پاکستان سے فار ایگزامپل انلیگلی ٹرانسفر ہو کے یورپ چلی جاتی ہیں تو بینک میں چلی جاتی ہیں, اور بینک کو ریگولیٹ کرتے ہیں ریگولیٹرز اور سینٹرل بینکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فنڈنگ ایک دفعہ وہاں پہنچ گئی ہے تو اس کی انلیگل ٹرانزیکشن جو ہیں اس سٹیپ سے آگے وہ نہیں پہنچ سکتے, نہیں ہو سکتے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پیسے آتے ہیں, میں نے کسی پہلے ہوتا تھا کہ یا تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے صندوقوں میں رکھ لیتے تھے یا انلیگلی جا کے وہ منی چینجر سے چینج کر لیتے تھے. گورنمنٹ کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی, تو گورنمنٹ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا پیسہ آیا اور کیسے استعمال ہوا اور کہاں گیا. تو یہ اصل فنڈامنٹل ایشو جو فیکٹر کو یہ ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں ہیں اور کیسے استعمال ہوں گے. اس میں سب سے ایک اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ انلیگل ٹرانزیکشنز کے لیے پیسے نہ آئے.
تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جون میں ختم پاکستان نکل آئے گا گرے لسٹ سے باہر یا بھی وقت لگے گا؟
ان پرنسپل تو ہو جانا چاہیے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کو آپ کبھی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, کبھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کیا معلوم کیا ہو, کیا معلوم کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سچویشن کیسی ہو, کیا معلوم کہ پاکستان اس قابل نہ ہو کہ جو اسٹیپس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کر سکے. یہ چیز ہوتی, لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں بڑی حد تک سٹیپس لے لیے گئے ہیں. کچھ اور سٹیپس لینے ضروری ہیں جو اگلے چھ مہینے میں ہو سکتے ہیں. اگر وہ لے لیتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے دوبارہ وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا.
کئی لوگوں نے کہا, کئی ماہرین نے, کہ صرف اصلاحات کی نہیں اور قانون سازی کی نہیں پاکستان کو لابنگ کی ضرورت ہے سیاسی سطح پر. تو کس حد تک اسے لابنگ کی ضرورت ہے اور کن ملکوں کے ساتھ؟
جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنا ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں, اور وہ یہ اسی لیے ان کا اگر آپ انٹرسٹ سیٹسفائی کر دیں تو پھر اس قسم کے جو سولوشن ہوتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں, اس قسم کے اسٹیپس آسان ہو جاتے ہیں. اب مطلب یہ کہ اگر پاکستان ریسٹرکشنز نہیں لگاتا ٹرانسفر آف ریسورسز کی, اے فری موومنٹ آف فنڈز ایز اٹ از کالڈ, تو پھر ظاہر ہے کوئی کمپلین نہیں کرے گا. لیکن اگر پاکستان ریسٹرکشنز بڑی سخت لگا دے جس کی وجہ سے لیگل فلو آف فنڈنگ جو ہے اس کے اثرات بڑے اثرات پڑنے شروع ہو جائیں, تو پھر وہ لوگ وہ ملک جو ہے وہ آبجیکٹ کریں گے. اسی کیونکہ ایک گلوبل سسٹم بن چکا ہے اور گلوبل سسٹم کے بیسس پر ہر اسٹیپ لیا جا رہا ہے. اگر اس گلوبل سسٹم میں آپ ایسے ایکشنز لیتے ہیں جو کہ ان سسٹمز کو یا ان رول پروسیجرز کو نگلیکٹ کرتے ہیں, تو پھر یقیناً دوسرے ملک ہیں وہ انٹرفیئر کریں گے. لیکن یہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی میجر جو مارکیٹس ہیں, جس میں کہ آپ یورپین مارکیٹس دیکھ لیں یا نارتھ امریکن مارکیٹس کو دیکھ لیں, کوئی ریسٹرکشن لگانے کے لیے کوشش کرے گا کہ پاکستان نے کوئی کوٹ ان کوٹ کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ریسورس ٹرانسفر جو ہیں ان پر برا اثر پڑ رہا ہے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 kHz پر.
تو سامعین یہ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو بات کر رہے تھے فیٹف کے اس فیصلے کے بارے میں جو پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھنے سے متعلق ہے. اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی آپ سے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل,
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش